Om Shanti. Good morning, everyone. It's a wonderful morning that we are here now for the inaugural session of this University and College Educators Conference on Educators, the Architects of Future Generation. तो आप सबको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर के? Are you already feeling that you are the architects of our coming generations? Really? Just imagine, हम हर दिन हर घड़ी ये महसूस करते हैं यहाँ पर रह करके, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सारी सृष्टि को वाइब्रेशंस पहुँचते हैं और सृष्टि उन्हीं उसी अनुसार चलती है. तो ये इस संस्था का, जिसको हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें शुरुआत से ही ये विजन रखा गया है कि सृष्टि का परिवर्तन हमारे ऊपर ही निर्भर करता है. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सारी दुनिया के लोग, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, प्रकृति, हर चीज़ उसी अनुसार बदलती जाती है. हमारा देश बदलता जाता है, लोग बदलते जाते हैं, कम्युनिटीज, सोसाइटीज, वी आर अफेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग ऑन दिस अर्थ. तो आज इस एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है. और मैं साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहती हूँ टू आवर रेस्पेक्टेड additional chief of Brahma Kumari, sister Jayanti, who sent such a beautiful message for all of us. I hope you all had watched it. So Jayanti didi ka bahut bahut dhanyawad. Main session ko shuru karne se pehle, I would like to invite all the eminent speakers of today's session. Rajyogini Brahma Kumari Suman Behan, national coordinator for the education wing. Dr. B.K. Pandemani Bhaiji, Director of Distance Value Education Programs. Professor B.J. Rao, who is the guest of honor for today's session, the Vice Chancellor for the University of Hyderabad. Then our next guest is Professor Dr. Mukesh Kumar Verma, Vice Chancellor for Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai. Professor Dipendra Nath Das Ji, Rector 2nd Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Rajyogini Brahma Kumari Shilu Behan Ji, the Vice Chairperson of the Education Wing. Professor Ramesh K. Goyal Ji, Vice Chancellor for Pharmaceutical Science and Research University, New Delhi. Rajyogini Didi Dr. Nirmala, Joint Chief of Brahma Kumaris, Mount Abu. Dr. Mahesh Sharma Ji, the Member of Parliament and the former Union Minister of Culture, Tourism, Aviation, Environment, Forest and Climate Change. And the chairperson of today's session, Rajyogi Dr. Brahma Kumar Mrityunjay Bhai Ji, chairperson of the Education Wing. And Dr. R.P. Gupta Ji, Headquarters Coordinator for the Distance Value Education Programs. We welcome all our guests on dais. I would like to start this session by sitting in silence for a few minutes and invoking the Supreme Godfather Shiva. Om Shanti. I request the Brahma Kumari sisters to welcome all our guests with bouquets and badges. And I also request Madhurvani Group of Mount Abu to sing a very beautiful welcome song for all of us. Rajyogi Brahma Kumar Mrityunjay Bhai Ji. स्वागत में आप सभी शामिल हैं।
पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सागर स्वागत है सत्कार। प्रभु के घर में आप पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सागर स्वागत है सत्कार। प्रभु के घर में आप पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। जैसा भी हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, कर्म हमारे अच्छे होंगे अच्छा ही फल पाएंगे। जैसा भी हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, कर्म हमारे अच्छे होंगे अच्छा ही फल पाएंगे। बच्चों को संसार भले दे पाएंगे सुखमय संसार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार। प्रभु के घर में आप पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। से शिक्षा के साथ में कर्म हमारे शिक्षक हो, आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के शिक्षक ही अब रक्षक हो। वाणी से शिक्षा के साथ में कर्म हमारे शिक्षक हो, आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के शिक्षक ही अब रक्षक हो। कभी परम शिक्षक ने बुलाया आपको है ये सोच विचार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार। प्रभु के घर में आप पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आ, 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 ऐसी शिक्षा ऐसे शिक्षक ऐसा शिक्षा ले कहां, विश्व को जो दे बदल वह विश्वविद्यालय यहाँ। ऐसी शिक्षा ऐसे शिक्षक ऐसा शिक्षा ले कहां, विश्व को जो दे बदल वह विश्वविद्यालय यहाँ। समय की यही पुकार है वो स्वप्न करे सारे साकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार, प्रभु के घर में आप पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार, प्रभु के घर में आप पधारे भावी पीढ़ी के शिल्पकार, शिक्षा जगत की विभूतियों का सादर स्वागत है सत्कार, शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा जोर से ताली बजाएं। आपने क्या समा बांधा है आज का, इतनी मधुर वाणी के साथ स्वागत किया हमारे सभी मेहमानों का, और अभी शब्दों द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राज्योगिनी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी को। शी इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द एजुकेशन विंग। इमेजिन एजुकेशन विंग हैज बीन यू नो आई थिंक 35 ईयर्स ओल्ड नाउ, मोर देन दैट इवन, and she has been very closely associated with education wing from more than 25 years, and I think she is the best person to tell about education wing ki kaise shiksha prabhat ki shuruaat hui aur kaise once a child now has grown up into a you know a big body and it's serving worldwide. So I request Suman Ben to introduce us to the education wing and also welcome all of us today.
Om Shanti. Manchasin, apne mahanubhav, vibhinna universities ke vice chancellors, professors, deans, registrars aur educators और फैमिली मेंबर्स, आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ ज्ञान सरोवर भगवान के घर में देख करके। यहाँ बैठे बैठे मुझे वो ये दिन याद आ रहे थे जो ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, ज्ञान सरोवर डेवलप हुआ और फिर इसका नाम ज्ञान सरोवर रखा गया था, क्योंकि ये माना जाता है सबसे बड़ा दान जो है ज्ञान दान माना जाता है। विभिन्न प्रकार के दान पुण्य तो करते ही है, गोदान भूदान अन्नदान, लेकिन सबसे बड़ा दान ज्ञान दान, जिसमें जिसको सक्षम बनाए सशक्त बनाए अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की प्रेरणा दे, ऐसा ज्ञान। तो ये ज्ञान सरोवर एक प्रतीक है जो ईश्वरीय ज्ञान इस संस्था के द्वारा दिया जाता है उस परमपिता परमात्मा के थ्रू जो दिया जाता है, ज्ञान का सागर है उनका ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारा फाउंडेशन है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान भी देते हैं, फिजिकल ज्ञान जो बुक ज्योग्राफी हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञान माना जाता है वो आध्यात्मिक ज्ञान फाउंडेशन है हमारे जीवन का। तो अगर वो फाउंडेशन मजबूत है तो वो इंसान कितने भी ऊंच उड़ सकता है, जैसे बिल्डिंग्स के फाउंडेशन जितना गहरा है वो इमारतें मल्टीपल बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसे हमारा फाउंडेशन है आध्यात्मिक ज्ञान। और इसी यूनिवर्सिटी के एक विंग है एजुकेशन विंग, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ साथ राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एक सिस्टर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत 20 विंग्स हैं, 20 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स को कैटर करने के लिए ये विंग्स क्रिएट किया गया, क्योंकि हम स्ट्रांगली इसमें विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान केवल एक बैठ करके हम अभ्यास कर ले और वो अलग, जैसे सुबह हमने प्रैक्टिस कर लिया, दिन भर हम प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग अलग जीवन ना हो करके एक आध्यात्मिक जीवन हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी वो दिखाई दे। जैसे एडुकेटर्स है, अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने दृष्टिकोण बदल रहा है और वो जो दृष्टिकोण बदला हुआ दृष्टिकोण हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वो दिखाई दे, तो इसी कारण से इसी लक्ष्य को लेकर के ये अलग अलग विंग्स प्रिपेयर किया गया। तो जिसमें हम एजुकेशन विंग वाले स्कूल और कॉलेज एजुकेटर्स को हम एक केटर करते हैं, क्योंकि एजुकेटर्स जैसे आज इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, एजुकेटर्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज में निभा रहे हैं और वो जो रिजल्ट है वो वर्तमान तुरंत नहीं दिखाई दे भले, लेकिन भविष्य में वो बहुत स्ट्रांगली वो दिखाई देता है। तो इसीलिए एक एक मंच सभी को एजुकेटर्स को मिला है दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, न केवल एक दो लोगों को लेकिन पूरे जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए वो एक मंच मिला है। अगर हम सशक्त होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को हम जरूर सशक्त कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस भी हम ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, नॉट ओनली होप बट ऑल्सो हैव डीप बिलीफ दैट आप सभी जो आए हुए मेहमान हैं यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए आप बहुत मौका मिलेगा, बहुत कुछ आप लेके जाएंगे, ना केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में लेकिन एनर्जी वाइज भी आप बहुत कुछ ग्रहण करके अपने आप को सशक्त करके अपने आप को एनलाइटन करके जाने से पहले, तो ताकि फिर वहां जाकर के आपने जो भी प्राप्त किया है वो अनेकों को आप जरूर लाभ देंगे। इन्हीं शब्दों से पुनः आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, आप अपने ही घर में भगवान के घर में पुनः आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मैं भी निवेदन करना चाहती हूँ डॉक्टर ब्रह्मा कुमार पांडेमणि भाई जी से, who is the director of the Distance Value Education Programs of Rajyoga Education and Research Foundation. Value education, we all know, is a very important part, and now our governments are also recognizing the importance of it. And Brahma Kumari's education wing is working very hard now to make value education implicit to the ongoing education of especially India and the world. So I invite Rajyogi Brahma Kumar Pandemani Bhai Ji to tell us about the value education programs that we have adopted and how we are running these programs by having MOUs with different universities of India and abroad. Brahma Kumar Pandemani Bhai Ji.
विशेष अभी हमारे सामने शीलू दीदी हैं, उनको स्वागत करते हैं कुलजत्र से। मंच आसीन महानुभव और प्रिय भाइयों और बहनों, आप को सबको इधर देख करके मेरा दिल गदगद हो रहा है। आप सब इतने महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, घर में पहुंचे हैं, अपने ही घर में। सबको ये मौका नहीं मिलता है। कईयों ने तो रजिस्ट्रेशन भी किया है, कईयों को कोई न कोई कारण यहाँ पहुंच भी नहीं पाते हैं। लेकिन आप सबको देख के मुझे आश्चर्य लगता है, आप कितना बड़ा भाग्यशाली हैं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हमारा आश्रम भर हमारा हेडक्वार्टर्स में इधर पहुंचे हैं। मैं शॉर्ट में ये वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। 2007 में हमने अन्नामलई यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था वैल्यू एजुकेशन में। उस समय 3 दिन का कार्यक्रम था, लगभग 1000 कॉलेज टीचर्स उसमें शामिल थे। उस समय वहाँ की जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार सभी हमसे पूछा है, आपने इतने अच्छे ज्ञान आपके पास, जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज है एंड स्पिरिचुअल विजडम है, उसके क्यों आपने ये कोर्स शुरू करें, हम आपको पूरा मदद देंगे। तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का हमने शुरू किया था। उस समय जब बात चल रही थी, वाइस चांसलर ने कहा था आप सिर्फ वैल्यू एजुकेशन रखो, स्पिरिचुअलिटी का अक्षर जोड़ने की क्या जरूरत है। हमारा परम आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब ने कहा है, एवरीवन नोज द ट्रूथ, वेदर वी आर एबल टू फॉलो इट ऑर नॉट इट इज द क्वेश्चन। टू ब्रिंग द वैल्यूज इन अवर डे टू डे लाइफ वी रिक्वायर द स्पिरिचुअल पावर्स। अनलेस वी हैव द स्पिरिचुअल विजडम वी आर नॉट एबल ईदर टू एक्सप्लोर द वैल्यूज नॉर टू सस्टेन द वैल्यूज। Therefore, they have accepted and we have started with only one program. Now we are running 16 programs including 3 master degrees and certificate programs, diploma programs, PG diploma programs through Annamalai University. One program you are conducting in 7 languages. It is not normally possible in all the universities. Till now we have taught or the persons who have taken benefit out of it, 36,200 students completed the value education program. Then there was a demand from every quarters, from every parts of India. Now we have signed MOU with more than 56 universities and autonomous colleges. This is a well start and we could able to meet the needs of everyone. Another interesting factor, we started some 4 years back on thought laboratory. It was inaugurated in the NIT Kurukshetra and also in different universities and colleges. Now it is gaining momentum. Thought laboratory is nothing but given an environment in an ambience way that the people can experience their real core values like love and peace. And we are having this time MOU with 2-3 more universities. One, Dr. Rohit Kumar in Desai, Vice Chancellor of Hem Chandracharya North Gujarat University from Patan has come over. We will have today's evening the signing ceremony of MOU with this Hem Chandracharya North Gujarat University. Another, Dr. Milina Pandey, who is the Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University from Pune. And we are having one more signing for Thought Laboratory also. Though we have started one program, we could able to make syllabuses and content as per the requirement of university. For example, Dr. Ambedkar Open University in Gujarat, in Ahmedabad, they have introduced one paper on value education and spirituality for all the undergraduate courses. First year, nearly 780 people have joined this course and we are offering this course as free of cost. Because we need not give any hard copies to the students and we are conducting the PCP classes and we are evaluating the answer sheets also. And accordingly, as per the need of every university, we could be able to meet the need of the university and offering various courses. We are having MOU with the national body and also national universities and also private universities, government universities, open universities, and we could एबल टू डिलीवर द डिलीवरेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी. देयरफॉर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वी आर ऑफरिंग ओनली जस्ट 12 इयर्स बैक. Whereas Brahma Kumaris are teaching this for the last 86 years. Everywhere they are having the centers, they are conducting the value education programs, and they give the strong mental powers, the mental health through the spiritual wisdom. Therefore, this is an opportunity as given some 12 years back, and we are progressing day in and out. Thank you for giving me an opportunity. Thank you.
Thank you so much, Bhaiji, for your great words. Now, I would like to invite Professor B.J. Rao, the Vice Chancellor for the University of Hyderabad. He is also the Chief Editor of Journal of Biosciences, a flagship journal of Indian Academy of Sciences and Springer Nature combined. Prior to that, he is the Senior Professor, Chair of Biology, Dean Faculty at the Indian Institute of Science Education and Research, and thereafter he took charge as the Vice Chancellor of University of Hyderabad. I invite respected Professor B.J. Rao to give his guest of honor speech.
Hari Om Tat Sat. Namaste to all of you. My special pranams to Suman Didi ji, Shilu Didi ji, and all other very eminent friends sitting on the dais, and equally eminent friends sitting off the dais. It's a very important, auspicious morning today, where we are discussing about the educators, the architects of future generation. Thanks to the efforts of RERF, Raja Yoga Education Research Foundation, Brahma Kumari Sansthan, that we are here. It's a very, very loaded topic. We are talking of future generations and we are talking of architects. Before I go into the real import of this discussion, I want to very briefly capture the present education system. The present education system is an externalized entity. Somebody comes and teaches me in a university, in a physical structure, through what is called communication of information, communication of knowledge, leading to degrees and certificates. This is the model that we have created. This is the education that worldwide we always have been following for the last few centuries. In essence, true education should come from within, not from outside. So we have created a paradox of the so-called education systems where I come and sit and listen. Therefore, the true education has not begun. Therefore, the architects, all of us, have to think about how to begin the true education. The true education where person not only gets what is called educated, but person also becomes an enlightened human being ready for the future. So we are caught in the paradox of an education which is a box and true enlightenment that should happen outside the box. Our country should provide the model, the real model where not only person gets educated in the true sense, but also becomes a useful, enlightened and a dedicated mind, spirit for the society, for the country, for the globe. New education policy in some sense is a beginning of that. The true educationists, the true enlightened people such as Gautam Buddha, Michael Faraday, Adi Shankara, Bill Gates, Mahatma Gandhi, Albert Einstein were not part of the box. They educated by inner awakening. We have to bring in that now. Externalization of education will stay, that model will stay. But we have to superimpose another model where individual has to become learner on his own or on her own efforts. The learning has to happen from within. This is what we need to now instill in the model of education that we have now. Because the model we have, we have. We can't throw away. Use that model, tweak that model, revise that model, and bring in the real sattva in it. I think these meetings will serve that purpose, in my opinion. If you go to universities and institutes, this setting is not visible. What is visible is technology, virtual reality, artificial intelligence, machine learning, robots, high data, supercomputers. These are all externalized objects. So the entire symbolism of educational system is a high power outside me. This is the meeting that tells me there is a power inside you. If your Ichha Shakti combines with that artificial intelligence and machine learning, I think a new beginning will happen. That is the architecture that we have to go for. And that is our agenda. And that agenda only can India provide. Obviously. Because in any other culture, the emphasis on self-awareness, self-awakening has not been underscored. It is only in our upbringing that has been very heavily underscored, which we have forgotten over the last few decades and centuries. These meetings really remind us that you are what you are. And from what you are, you have to become what you want to become. Unless you truly know what you are, you do not know what you need to become. Even if you know, you cannot. Because your time zero state has to be very clearly defined in the physical world. If your time zero is not clear, you will not know what will happen in time X. We need to redefine ourselves in our time zero. I want to remind myself of what Gautam Buddha had said several centuries ago in three sentences. And that I think depicts the power of inner education. And what he said was, you become what you want. You achieve what you desire. You create what you dream. Gautam Buddha essentially says the creator is in you, not the external world. So therefore, this is the time for us to remind ourselves through new education system that we need to awaken our own Gautam Buddhas. I do not want to take too much more time. I have been given only 5 minutes. And my simple wish, desire, and summary statement is that we need to bring in the external model of education into our inner awakening, merge it both. You are the real technology and there is outside artificial technology. Combine both and then the real beginning will happen. This is my simple take home of what I have been thinking about new education models, new education policies and the way to mold learners, etc., etc. It's a very important take home in my opinion and we must all be striving towards that. Thank you very much. Namaste.
Bahut bahut dhanyawad Prataji. You very clearly emphasized on the working current model of education, how it should be, because the whole purpose of education is to educe, not to induce, and that is why we call it education. So yeah, we all are doing it here in our organization called Brahma Kumaris, because you all see that the brothers and sisters, yes, they all have a very different personality altogether, and they always practice spirituality as a very important aspect of it, and working on it for their entire lifetime. And that's how we see the organization growing so fast, and we see each and everything that is taught here. First, values are given importance, and rest other things follow. So now, to lighten the mood of today's session, I am inviting Sister Akansha and Kamya from Palam Vihar, Delhi, to give a beautiful dance presentation in front of us. A big hand, please.
खुद को सजाने घर को
A huge round of applause for Akansha and Kamya. And for your kind information, this song has been written and sung by Akansha. It was so beautiful indeed. Many congratulations and thank you for your great performance. Now I would like to invite Professor Dr. Mukesh Kumar Verma ji, the Vice Chancellor for the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University of Bhilai. Honorable Sir has been the Chairman of the Inspection Committee of AICTE, Accreditation Committee, Purchase Committee, and lot of others, and he has also been the coordinator for the STA National Rural Drinking Water Project, Ministry of Drinking Water and Sanitation for Government of India, and he has whole posts like he was the Dean of Academics, Research and Consultancy, Student Welfare, Biomedical Engineering, Head of the Department of Civil Engineering, and the Chief Coordinator for First Convocation of NIT Raipur, and his total experience is 30 years. I invite Honorable Dr. M.K. Verma ji, the Vice Chancellor, to give his guest of honor speech.
Om Shanti. मंच पर मंचस्थ परम आदरणीय श्रद्धे सभी भ्राता और भगनी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी भ्राता और भगनी, मैं आप सबका नमन करता हूं। ऐसे प्रमुख विषय पर हम सब यहां चर्चा करने के लिए, और न सिर्फ चर्चा करने के लिए बल्कि अनुभूति करने के लिए, न सिर्फ अनुभूति करने के लिए बल्कि उसे हम आचार विचार और व्यवहार में लाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस सेमिनार का विषय शिक्षक नई पीढ़ी के शिल्पकार हैं। जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो एक शब्द और उभरता है जेहन में, गुरु। शिक्षक और गुरु दोनों तो यूं पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन गुरु की जब बात करते हैं तो वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों किस्म की प्रेरणाएं और शिक्षा और सक्षम बनाते हैं। ऐसे समय में हमारे भारतवर्ष में जब अनेकों अनेक साधु संत महात्मा और गुरु हुए हैं, मैं कुछ युग और युगांतरकारी शिक्षकों का स्मरण करना चाहता हूं, आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं शुरू करूंगा श्री रामचंद्र जी, जो हम भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके शिक्षक वशिष्ठ जी थे, कुलगुरु थे दशरथ जी के वंश के। उन्होंने चारों भाइयों को शिक्षा दी, आध्यात्म की शिक्षा दी, नियम कर्म धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद वाल्मीकि जी, जो कि पहले खुद कभी राजा हुआ करते थे, एक बार गुरु वशिष्ठ के कामधेनु को लेने के लिए उनसे युद्ध किया और उसमें परास्त हो गए और उनका अंतःकरण जागृत हो गया और वह स्वयं एक महान ऋषि बने, जिनसे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने आयुध और युद्ध इसकी शिक्षा दीक्षा ली और वहां पर रहते हुए साधु संत महात्माओं की रक्षा राक्षसों से दैत्यों से की। उसके बाद हम आते हैं द्वापर युग में, श्री कृष्ण भगवान जी के, उनके गुरु सांदीपनि रहे जो उज्जैन में रहते थे और वहीं उनका आश्रम था। इसी आश्रम में बलराम जी और सुदामा जी के साथ में श्री कृष्ण जी ने 24 कलाओं की शिक्षा ली। इसी दौर में, इसी कालखंड में आचार्य द्रोणाचार्य हुए, जिनकी शिक्षा क्षमता सबके बारे में आप सभी को विदित ही है। इसके बाद हम आते हैं कालखंड में आगे, तो शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य की बात करते हैं। आद्य शंकराचार्य जो कि बिखरे हुए आध्यात्मिक तत्वों को, ज्ञान को, जो लोगों के बीच में बिखराव था उसको एक करके उसको एक संस्थागत स्वरूप दिया, चार मठों की स्थापना की, चार धाम की स्थापना की, और उसे एक कभी न खत्म होने वाले एक दिशा निर्देश दी। मैं इनको युग युगांतर गुरु इसलिए बोलता हूं, श्री रामचंद्र जी को जो शिक्षा मिली, जो उन्होंने कर्तव्य किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया मानव जीवन के रूप में, एक रामायण की रचना हुई, आज भी हमारा प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण जी, उनके उपदेश गीता के रूप में, आध्यात्म के रूप में, आज भी हमारे मानव जगत को प्रेरणा और राह दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी के बाद आचार्य विष्णुदत्त, जिनको चाणक्य के नाम से हम जानते हैं, उस समय बिखरे हुए भारतवर्ष में एक अखंड भारत की उन्होंने संरचना करी और एक शिष्य को इतना सक्षम बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, जो धर्म आधारित राज्य की संकल्पना है वह वहां पे उन्होंने स्थापित की। बाद में हम आगे आते हैं तो हम शिवाजी का नाम सुनते हैं, जो परतंत्र भारत के समय में, मुगलों के समय में, उनके गुरु समर्थ रामदास जी, उन्होंने उनको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत किया कि इतिहास गवाह है, दक्षिण में मुगल कभी विजय प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद के कालखंड में जब हम देखते हैं, जो हमारा 18वीं और 19वीं और 20वीं सदी की बात करें, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, उनको ना अक्षर ज्ञान था, ना ही कोई औपचारिक शिक्षा उन्होंने ली थी। उनकी शिक्षा अंतर मन से आती थी, उन्होंने शिक्षा को अपने अंतःकरण से प्राप्त किया, मां काली का दर्शन और साक्षात वार्तालाप हुआ करता था। इस उच्च स्तर का उन्होंने तादाम्य माता काली से स्थापित किया था। वो भी एक अपने शिष्य की खोज में थे, और नरेंद्र नाम का एक बालक, जिन्हें आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जो आज भी हमारे, न सिर्फ हमारे बल्कि सारे मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके द्वारा जो आध्यात्म का ज्ञान था, उसको व्यवहारिक रूप से हम किस तरीके से व्यवहार में लाएं, मानव के जीवन के अलग अलग पहलुओं में किस तरीके से उनको आचरण में लाएं, किस तरीके से हम आत्मसम्मान और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें, यह राह उन्होंने दिखाई। उनकी नजर में शिक्षा जो है मन के अंदर में अंतर्निहित असीम संभावनाओं का प्रकटीकरण था। इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी विद इन द मैन। कहने का मतलब, आज की तारीख में पिछले दो सदियों से हम देख रहे हैं कि लौकिक शिक्षा पे बहुत जोर है, भौतिक शिक्षा, फिजिकल मटेरियलिस्टिक शिक्षा पे बहुत जोर है, उसी के ज्ञान विज्ञान नियम ये हम पढ़ते हैं और उसी का उपयोग करते हैं, और उपयोग करते करते आज हम पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, पौधे हो, यहां तक कि मनुष्य को भी एक संसाधन के रूप में देखते हैं। कुछ वर्षों के पूर्व तक के हमारे यहां भी एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, यानी मानव को इस भौतिकवादी ज्ञान ने एक रिसोर्स के रूप में देखा, एक पूर्णता के रूप में नहीं देखा। आध्यात्म का तत्व बहुत दूर चला गया। आज हम उसको पुनः प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चीजों का समावेश कर रहे हैं। प्रथम तो इस मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। जब हम अंतर यात्रा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अमर है, संपूर्ण है, सर्वस्वरूप है, सर्वव्यापी है। इसी बात का एहसास करते हुए जो हमारा काम है, हमारा लक्ष्य है, इसको यदि हम प्राप्त करें और उस प्राप्त करने की दिशा में हमारी शिक्षा और शिक्षक विचार पूर्वक जो भी हम विषय पढ़ाते हैं उसमें इन चीजों का, इन तत्वों का समावेश करें, तो मुझे लगता है कि हम शिक्षा को बहुत ही सार्थक और हमारे पौराणिक विश्वगुरु की स्थिति में ले जाने की तरफ अपना अपना योगदान देने में समर्थ होंगे। ये कौन कौन से पहलू हैं जो शिक्षा को पूर्णता की तरफ ले जाती है? एक तो जो हर एक विद्यार्थियों में एक पूर्णता है, अंतर्निहित पूर्णता है, उसकी अभिव्यक्ति करना, शारीरिक क्षमताओं का विकास करना, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना, चरित्र निर्माण करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, और विद्यार्थियों को मनुष्यत्व, मनुष्य बनाना। साथ ही साथ जैसे आज की तारीख में, आज के युग में शिक्षा जो है नौकरी का साधन या एक उद्देश्य बन गया है, इस महत्वपूर्ण पहलू को जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है उसको भी इसमें सम्मिलित करें। वो आप अपने आप आज मौजूद हैं, और साथ ही साथ इस पूरे शिक्षण देते समय इन तत्वों का समावेश करें हम अपने विषय को पढ़ाते समय, और राष्ट्रीयता की भावना का बोध कराएं, जागरण कराएं। तो मुझे लगता है कि ऐसी शिक्षा या शिक्षा देने के तरीके में हम ये सब चीजों का समावेश करें तो ये आज का जो सेमिनार है जिसमें नई पीढ़ी के शिल्पकार के रूप में शिक्षक और गुरुओं को देखा जाता है, हम वो भूमिका आज के इस सेमिनार के उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। ना सिर्फ हम करें बल्कि हम अपने साथी शिक्षकों को भी प्रेरित करें। और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कोई भी विषय पढ़ाते हो, ये सब पहलू हम उसमें उदाहरण के तौर पे ला करके हम समग्र विकास कर सकते हैं। बस इतनी बात बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू सो मच ब्रदर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर दीपेंद्रनाथ दास जी, द रेक्टर टू ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। He is also the former dean from July 2019 to February 2022, the School of Social Sciences in JNU, and the professor for the Center for the Studies of Regional Development, School of Social Sciences, JNU. He has written three books called Lost Childhood, Unmasking the Lives of Street Children in Metropolitan India, Pollution Population of India 2011, and Child Labor in India. And he has written about 40 articles or chapters, and his research students have been around 30 for MPhil and 35 for PhD. I invite Professor Dipendranath Das ji to give his guest of honor speech.
Namaste. Good morning to all the dignitaries on the dais and of the dais and all the young participants. It's a really very auspicious moment to get chance to come here and visit this place which is full of positivity, and we can feel it. All the people, those who are on the dais, actually they are very, very busy, and myself was thinking of whether to spare time for attending it or not, but really, as in the beginning it was told, that we are fortunate enough to get the chance and to be here with all these positive persons. The basic theme of the meeting here, for which we have gathered, is to deliver regarding the objectives of the education. And we know that India is a very, very diverse country, and we are fortunate enough to get so much of diversity, not only in terms of our natural attributes, but also in terms of the God's most beautiful elements, the human beings. If you go along across the country, we'll find so many diversities among the people, those who are living within this country. And thing happens that in education, each and every moment, we should give the importance to the diversities. Many a times we discuss about the diversities given by the natural attributes, but the diversities within the people, those who are living, in many aspects, it's very difficult to list the diversities whatever are there. Any education system actually inculcate among the students that diversities. The basic objective is that with that process we can come across the attitude of imbibing tolerance, patience, harmony, cooperation and coordinations. And I don't have any hesitations that many of these elements are missing many a times. Sometimes we find a combination of few of the things, but many a times there is missing of these elements, not only in education but also in the practice of our day-to-day life, and which affects actually. Most important is that when we were children and got exposure to the lessons, say late 60s, 70s, 80s, somehow I do not recall that how much part was there in the syllabus, in the education related to value education. But in the culture, the education related to values, moralities, were very much actually. It was loaded in many a form. But nowadays, that is there, but its dimension and the magnitude is reducing, and we need to give the lessons of the value education. And if it is not there, as I told, the diversities as it exists in the nature, same way it exists within the human beings, will not be able to appreciate and accept. This is very, very important. And we know that any civilization can flourish, can maintain, and can be sustainable for years after years without its very solid rooting within the traditions, cultures, and norms of the society. And we know India is very, very rich in terms of its cultural and spiritual heritage. And we know, as it was told, that Vivekananda, towards the late 19th century, he had taken that what treasure India had and exposed to the world. And many a times, because of the missings of those appreciations in terms of our lessons and within our practice, we do not know that so much of a huge treasure are there within our society, within our culture, and that cannot carry it forward among the members of our society. And each and every students, actually, they should get chance to be exposed to those rich culture and spirituality. Spirituality is very, very important. As it was being told, when Alexander had invaded India, he had certain aspirations to know why these people are so happy and wanted to meet the sadhus and sons of the continent. And we should actually appreciate it and be exposed in whatever forms the all the spiritual treasure we are having. Most important is that if you see it, our educational system which had existed in the past, which is lacking in the modern time, is the holistic developments, not only towards the intellectual, but also the physical. It had a very good coordination. There was no separation in the process of learning for the purpose of developing intellectuality, but also for the physical development and coordination of each and every aspects of the body, starting from its mind to each and every limbs, muscles, and the inner organs. That requires actually certain training, and that aspects are there very much, and which is lacking in the modern education. In modern education, we know it is excessively driven by the market. And sometimes we forget actually that what for we are in this world. We know in Indian society that market, if we just take it, that it promotes the consumerism. But the basic objective of human beings, and particularly of our society, I am not just telling, but it should be the motto of all human beings across all the continents, that we are here just to serve. And that is the most important part of our Indian knowledge system and culture of the society and tradition of the society. If you see all the great persons, as it was being told about Shivaji, Guru Ramdas, what he had taught Shivaji. When Ramdas was actually begging from door to door, then Shivaji told, so he is my guru and I am the king and I am having so much of rich treasures and powers. Still my guru is actually begging from door to door. Then he went and asked actually, so what do you want? If you don't want to be satisfied, I surrender everything to you. And you know ultimately what happened.
Ramdas took him and throughout the day he kept on begging. King is begging also along with him. At the end, he told that you have submitted everything to me. Now, on behalf of me, I am asking you to serve the people. So it is not that you are having power, resources for your enjoyment. All these things, whatever the elements you have, your duty is to serve each and every element, all the human beings and the natural elements existing in the society. That is the basic tenets of the Indian knowledge system. But problem is that the market-driven education is actually misleading us and forcing us to forget the basic motto of it. Therefore, many a times what happens when we are in trouble and the problems becomes unmanageable, then we do not actually search the solutions from our own inner strength, but also we try to search it from the help of the others, which doesn't exist actually. We know the solutions are there within ourselves. It doesn't exist outside. So the basic objective of education and the motto of education, that should be done in such a way that it is not fully consumerism. We need to consume certain things for sustaining and for serving. But it is not that whole human society and the nature is at our possession and we have actually assumed it, reigned it, and we want to consume each and every element. It's not, if it is that, in other way, we need to contribute each and everything, whatever within us, whatever we have received in term, to return it just by giving selfless service to the societies, to human beings, and to the nature. There is no separation between the nature and we are also part within the nature. That's the basic objectives of the life, and that is the basic tenets of the Indian knowledge systems, traditions, cultures, and the spirituality. As it was being told, that the national education policy, which gives us certain directions, we hope that if it is implemented fully, then many a things that our education system needs to actually imbibe and practice day-to-day life, which ultimately gives the excellences of the humanity, the beauty, the perfections, whatever are there, that should be recognized and that should be exhibited. When we say the positivity, positivity is nothing but that you get attractions by the others so that there is no repulsive factors. It is only the positivity. Wherever you go, you assume positivity and you radiate positivity. And that system are there within our society, within our knowledge system, within our culture and spirituality. That should be understood, that should be inculcated, and that should be practiced in each and every steps of our. And therefore, today when we find that in competition, in market-driven education system, the problems of the mental health of the students and young generations are increasing a lot actually. I am in the university and many persons are in the university. They know it. The cases of mental agony, depression and psychological problems are increasing among the young people. They are not in position to handle the pressure, not in position to handle the emotions. And all these things are only to be actually achieved in a very, very meaningful way if you are grounded in that way, that our spirituality, our traditions, appreciations to the diversity, appreciations in terms of free thinking, accepting everything, those are needed, and the society become very, very stable and progressive, marching towards higher heights. Thank you all.
Thank you so much, brother. Now, as I was saying, a small activity for all of you to wake you up. आपके बगल में जो लोग बैठे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, शायद आप में से काफी लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, तो आपके बगल में जो लोग बैठे हैं, जरा अपने आप को उनके साथ इंट्रोड्यूस कर लीजिए, उनकी तरफ देखिए, और आपके पास एक मिनट का टाइम है, शेक हैंड कर लीजिए उनसे और अपने बारे में उनके साथ शेयर करिए, थोड़ा मुस्कुराइए, उनको बताइए आप कहाँ से आए हैं, और उनको, हाँ जी, वेरी नाइस, इट इज सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू. अभी सब जाग गए हैं एक दूसरे के इंट्रोडक्शन में, और उनको ये भी बताइए और सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी मैं सो रहा था अभी, अब मेरे कारण से अगर आपको थोड़ी परेशानी हुई हो तो आई एम सो सॉरी. ओके, थैंक यू सो मच. इंट्रोडक्शन हो गया. हम जब यहां से जाएं तो बहुत अच्छे दोस्त बनकर के भी जाएं एक दूसरे के. और अभी हमें एक बहुत सुंदर मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में ले जाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हैं. शी इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ एजुकेशन विंग. शी केम इनटू दिस नॉलेज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एंड इंट्रोड्यूस्ड टू स्पिरिचुअलिटी व्हेन शी वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, इमेजिन. एंड शी देन डिसाइडेड दैट शी वॉन्ट टू सरेंडर हर होल लाइफ सर्विंग पीपल and as a spiritual person, and God has given her that lift. We all call her as Saraswati because we see Saraswati speaking through her mouth, and she's a very good orator. She visits many countries, conducts many training programs, especially the Raj Yoga Shivas in our organization. I invite Honorable Shilu Didi ji to give her speech also and then conduct the meditation experience for us.
Om Shanti. Phir se ek baar. Om Shanti. Om Shanti. Shanti ke sagar, prem ke sagar, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे महानुभाव तथा सभा में सभी हमारे माननीय शिक्षकगण, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है. एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन. वैसे भी शिक्षक के लिए कहा जाता है कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन. आप दूसरों को पढ़ाते हैं, आप तो वही होंगे, सालों साल वही विषय आप पढ़ाते होंगे, और आपके विद्यार्थी आगे पढ़कर बहुत कुछ बन जाते हैं. लेकिन हम स्वयं पे क्या अनुभव करते हैं? जितना पढ़ाने में खुशी होती है, उतना पढ़ने में भी खुशी होती है. हम जब दूसरों को पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अंत तक सीखना है, पढ़ना है। और हम यहां से क्या ले जाएंगे इस संसार से, जो भी हमने कुछ भौतिकता पाई वो तो यही रह जाएगी, लेकिन जो हमने जीवन में अनुभव किए वो हमारे सबकॉन्शियस में जरूर रहेगा। वो अनुभव हम अपने साथ ले जाएंगे आगे की यात्रा में, और वो अनुभव अगर शाश्वत बनाना है, स्थायी बनाना है, तो अपनी आत्मा को भी सशक्त करना होगा। ऐसे न हो कि हम दूसरों को तो बहुत आगे बढ़ाएं और स्वयं वहीं के वहीं रह जाएं। हम उसमें कैसे आगे बढ़ सकेंगे जब हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि हम सबके सामने परीक्षाएं तो आती है, केवल विद्यार्थियों की परीक्षा हम लेते हैं ऐसी बात नहीं है, हमारे आगे भी परीक्षाएं आती है, जीवन में परीक्षाएं आती है, स्वास्थ्य की परीक्षा आती है, धन की परीक्षा आती है, संबंधों की परीक्षा आती है, व्यवहार में भी परीक्षाएं आती है, कई ऐसे कर्म हम कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, समझते भी हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर क्या कह देते हैं, क्या करें, मैं बेबस हूं, क्योंकि वो आंतरिक शक्ति नहीं है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम वो आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं जो हमें अपने लिए भी चाहिए तो औरों को देने लिए भी चाहिए। कई बार हम औरों को तो दे देते हैं लेकिन हम अपने लिए यूज नहीं करते हैं। इससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारे पास है, परंतु कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन, जो घोटे उसी को नशा चढ़े। तो हम घोटते जरूर हैं, मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, पढ़ना और पढ़ाना ये तो शिक्षकों का नियम है, क्योंकि आगे से आगे पढ़ाना है, वही वही नहीं रहना है। तो हम खुद को कितना पढ़ाते हैं ये भी हम देखें। खुद को पढ़ाना माना अपने जीवन में परिवर्तन लाना। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो सिद्ध होता है कि हमने खुद को नहीं पढ़ाया। औरों में तो आ जाएगा परिवर्तन, पर हमारे में नहीं आएगा। और अगर हमारे में परिवर्तन आकर हम दूसरों को वो शिक्षा देते हैं और उनमें परिवर्तन आता है तो उनकी दुआएं भी हमें मिलती है और हम दुआओं से आगे बढ़ते हैं। अपनी मेहनत से तो बढ़ते ही हैं लेकिन औरों की दुआओं से भी आगे बढ़ते हैं और अंतर में सशक्त हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को आध्यात्मिकता से सशक्त करें। वो बाह्य विद्या से हम आत्मा का सशक्तिकरण नहीं कर सकेंगे। बहुत कुछ हम इन्फॉर्मेशन तो ले लेंगे लेकिन केवल IQ इन्फॉर्मेशन क्वोशेंट ही बढ़ेगा, पर IQ के साथ हमारा EQ भी बढ़े, हमारा अपना भी इमोशनल क्वोशेंट बढ़े, हर परिस्थिति में हम अपने आप को संयमित रख सकें, EQ के साथ साथ मॉरल क्वोशेंट MQ भी बढ़े, वो तब होगा जब SQ हमारा बढ़ेगा, अर्थात स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल क्वोशेंट माना जो आत्मा के मूल गुण हैं उनको हम उजागर करेंगे, कहीं वो सुषुप्त तो नहीं हो चुके हैं, कहीं वो डॉर्मेंट तो नहीं हो गए हैं, तो उन्हें जगाना होगा, अवेकन करना होगा. और कैसे जागृत करेंगे? अपनी सोच में वो ला करके. हमें कोई चीज चाहिए तो हम मांग के ले सकते हैं, हम बिना मांगे भी ले सकते हैं. लेकिन अगर हमें शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, ये कोई मांग के लेने की चीज नहीं है. ये किसी से हम भिखारी बन के मांगे कि हमको प्यार दो, हमको शक्ति दो, हमें शांति दो, तो नहीं मिलेगी. हम भगवान से भी मांगते हैं, इतनी शक्ति तो देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. तो ये शांति, प्रेम, शक्ति, ये कोई मांगने से नहीं मिलती, ये अपने आप में चिंतन से बनती है. शांति कोई चीज नहीं है जो भगवान हमें देगा, कोई वस्तु मेरे हाथ में देगा और कहेगा लो बेटा शांति. कोई आइसक्रीम या लॉलीपॉप नहीं है जो हम अपने बच्चों को देते हैं. लेकिन ये मन की स्थिति है. मन की स्थिति अर्थात मन में वो शांति का चिंतन, मन में वो परम शांति के सागर का चिंतन, वही हमें सच्ची शांति का अनुभव कराएगा. इसीलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू शैल बिकम. अगर आप ये सोचते हैं मैं तो बहुत अशांत हूं, मैं तो बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, भगवान भी नहीं दे सकेगा. मैं बहुत अशांत हूं यही सोच लिया हमने. लेकिन उसका पॉजिटिव अप्रोच है कि शांति मुझे बाहर से कोई दे ही नहीं सकता है, ये मेरे पास ही है, लेकिन उसको जगाना है. इसीलिए कहा जाता है हाउ फार इज पीस अवे फ्रॉम यू, इट इज जस्ट वन थॉट अवे, ओनली वन थॉट अवे. और वो थॉट ही है ओम शांति, जो आज सुबह भी बताया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति धाम का वासी हूं, और मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं. शांति मेरा मूल स्वभाव है, शांति धाम मेरा असली घर है, और शांति का सागर मेरे परम पिता परमात्मा है. जब ये बोध हो जाता है तब हम महसूस करते हैं कि शांति कहीं भी हमसे दूर नहीं है, है तो अभी है, और अभी नहीं है तो कभी नहीं है. तो चलिए हम उस शांति का अनुभव करेंगे अपने चिंतन के द्वारा, परमात्मा से योग लगाकर, उनसे सर्व संबंध जोड़कर, उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त कर, जैसे बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट हो जाती है तो अपने आप चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई. आज जहां पॉजिटिविटी है वहां शक्ति है, जहां नेगेटिविटी है वहां शक्ति नष्ट होती है. तो मेडिटेशन हमें वो पॉजिटिविटी सिखाता है जिससे आत्मा फिर से जो वो शक्तिशाली थी वो वापस अपनी शक्ति को प्राप्त करती है. तो चलिए एक अंतर की यात्रा करें, ये मन बुद्धि की यात्रा है. मन और बुद्धि हमारे दो पंख हैं, जिनसे हम उड़ते भी हैं, हल्के भी होते हैं और अपनी मंजिल उस परमात्मा तक पहुंचते भी हैं। अपने भीतर झांक कर देखें कि मैं कौन हूं, स्वयं ही स्वयं को उत्तर दे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मुझ आत्मा का मूल धर्म है। शांति एक शक्ति है जो मुझ आत्मा में ही निहित है। इस शांति की शक्ति से मैं स्वयं को भी सशक्त कर सकती हूं और वातावरण को भी शक्तिशाली बना सकती हूं, अन्य आत्माओं को भी शांति का दान दे सकती हूं। जिससे समाज और विश्व में भी शांति आ सकती है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहवासी इस सृष्टि मंच पर केवल अभिनय करने आई। और मैं वो अभिनय इतना सुचारू रूप से करूं जो अन्य आत्माएं भी उनसे प्रभावित हो, उनको भी मैं सशक्त बना सकूं। मेरा सच्चा लक्ष्य इस रंगमंच पर अच्छे से अच्छा अभिनय करना है और अभिनय करके वापिस अपने धाम जाना है। जो मेरा असली धाम है, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मैं एक सेकंड में मन और बुद्धि से वहां पहुंच जाऊं। पांच तत्वों से पार जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा प्यारा शांति धाम। मैं एक सेकंड में वहां उड़ जाऊं। महसूस करूं एक बेहद प्रकाश की दुनिया, चारों ओर अनंत सुनहरा लाल प्रकाश, बेहद शांति, और मैं आत्मा यहां एकदम निर्संकल सब बंधनों से मुक्त एक परम पिता परमात्मा की याद में उनकी ही लगन में मग्न परमात्मा जो परम पवित्र है रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान अनंत गुणों के सागर है उनकी मैं दिव्य संतान आत्मा हूं वो शांति के सागर है और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं वो असीम शांति में मन मग्न हो जाए जैसे बूंद सागर में समा जाती है मैं अपना अस्तित्व भी मिटा दूं मैं शांत स्वरूप आत्मा उस शांति के सागर में समा जाऊं मैं और मेरा समाप्त अगर मैं कुछ हूं तो केवल एक शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप आत्मा और मेरा कुछ है तो केवल एक परम पिता परमात्मा और इस परम शांति को स्वयं में भरकर उस शक्ति को समाहित कर फिर वापस लौटे और कर्म योगी की भांति फिर से कर्म में आए और जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को इस्तेमाल कर कर्म करता है और फिर समेट लेता है हम योगी आत्मा भी अपने इंद्रियों से कर्म करके उसी शांति की शक्ति से कर्म करके फिर अपने स्वधर्म में टिक जाए यही सच्चा राजयोग है यही वास्तव में जीवन जीने की कला है यही आदर्श जीवन है जिससे ये जन्म तो सार्थक होगा ही पर जन्म जन्म हम अपना सार्थक कर सकेंगे ओम ओम शांति,
ओम शांति। शील दीदी, हमारे बीच में आदरणीय निर्मला दीदी जी पधारे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अपना बहुत कीमती समय लेकर के और स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते हुए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम बहुत सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप सब ने महसूस किया होगा। हम बहुत बार यहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं, गॉड इज द कम्फर्टर ऑफ हार्ट्स, दिलाराम, परमात्मा सभी के दिल को आराम देने वाला है। तो आपको वो आराम महसूस हुआ सभी को? हाँ, आर यू एबल टू फील इट? अपने दिल पे हाथ रख के महसूस कीजिए कि क्या मेरे दिल को वो आराम महसूस हुआ, क्या यहाँ आकर के वो आराम महसूस हुआ। तो दिल को छू गया। तो ये हमारा बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है शिव परमात्मा के साथ, जो हर कोई यहाँ आकर के महसूस करता है। और हम अभी जैसे आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहती थी, बिकॉज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा जी और प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी, ही वॉज मेंशनिंग अबाउट दैट हाउ वी शुड लर्न अबाउट फ्रॉम आर सेंट्स, द स्पिरिचुअल लीडर्स, गुरुज एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी शुड रीड एंड फॉलो वॉट दे हैव डन। लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं आज की दुनिया में, वी वॉन्ट टू सी लाइव एग्जाम्पल्स, इजंट इट? द चिल्ड्रन ऑफ टूडे एंड द यूथ ऑफ टूडे, दे वॉन्ट टू सी लाइव एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ देम कि हु दे शुड फॉलो, बिकॉज आजकल किताबें कोई पढ़ता नहीं है, और जो देखते हैं उसी में विश्वास करते हैं। लेकिन सामने दिखता कौन है, किसको देख रहे हैं सामने? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, दादी प्रकाशमणि जी का। देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन, इट वाज अ ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में कौन होते हैं? जजेस थे और लॉयर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, दे हैड कम फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड पार्टिसिपेटेड। एंड दादी ओपनली आस्क्ड, शी वाज द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दी देन चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एंड शी आस्क्ड एवरीवन, आप में से कौन है हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है? इमेजिन। एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस पैनल में बैठे थे उस समय, एंड और सबके जिसको कहते हैं ना, सबका सर झुक गया। एंड दादी अपना हाथ उठा करके कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। सो सीइंग इज बिलीविंग, देख करके सीखना उसको कहते हैं। तो हमने इस इंस्टीट्यूशन में ऐसे अपनी दादियाँ, अपनी दीदियाँ, स्पिरिचुअल जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, उनको फॉलो करते हुए देखा है। तो यही लाइव एग्जाम्पल आपके थ्रू भी आपके स्टूडेंट्स, बच्चे, यूथ देखना चाहते हैं। सो डोंट प्रीच, जस्ट प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। सो दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। और मैं अभी निमंत्रण देना चाहती हूँ प्रोफेसर रमेश के गोयल जी को, वाइस चांसलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। ही प्रीवियसली हैज बीन वाइस चांसलर ऑफ द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वी क्लिम्बायो प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, डायरेक्टर ऑफ ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा पंजाब, एंड ही हैज ऑल्सो बीन द डायरेक्टर फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च SBKM's NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द AICTE न्यू दिल्ली। आई इन्वाइट ऑनरेबल ब्रदर टू गिव हिज गेस्ट ऑफ ऑनर स्पीच।
ओम शांति। अभी एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन प्रोग्राम और उसके पहले कई शिक्षाविद स्कॉलर्स इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। आज मैं पहली बार इस ज्ञान सरोवर में आया हूं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी का परिचय वैसे मुझे अभी तक याद है, 50 साल पहले की बात याद आ जाती है जब भी ये बात को सोचता हूं। यहां पर ये मैं बड़ौदा में था और न्याय मंदिर में एग्जीबिशन लगी हुई थी, जो प्रदर्शनी यहां भी देखी आज उसी तरह की एक प्रदर्शनी थी। और पहली बात, और आप समझ सकते हो कि 10-12 साल का बच्चा हूं या 12-13 साल का लड़का हूं, ये उम्र रही होगी मेरी उस टाइम पर। तो उस समय जो एक चीज याद रह गई और वो अभी तक याद है, GOD मीन्स जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, जो एक बहुत ही इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेज आई गॉट एट दैट टाइम। बट आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी और मे बी सेकेंड, आई मीन 8th, 7th, 8th। बट देन वेन आई बिकेम इन 9th and 10th, वेन आई स्टार्टेड लर्निंग साइंस, सो आई हैड मोर अट्रैक्शन टूवर्ड साइंस। एंड देन आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग एट दैट टाइम। बायोलॉजी टीचर टोल्ड मी देर इज इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट लाइक साइंस, सो दे यूज टू एवरीथिंग वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन। नाउ टूडे वेन आई एम हेयर फर्स्ट आई एम फीलिंग सो मच ब्लेस्ड दैट आई एम सिटिंग अमंगस्ट वेरियस राजयोगिनी जी, राज दीदी, very eminent educationist sitting in the audience, and I have been trying to learn this Brahm Kumari ji's what it, and today when we have educators as the architect. Now if I am an educationist, I think everybody will agree, vice chancellors, you call the highest degree, that is the doctor of philosophy. Am I right, sir? Philosophy. So philosophy, why it is not in different, doctor of medicine is there, but bearing 2 or 3, it is all philosophy. Can we separate education from philosophy? Philosophy and religion, religion and spirituality, I think even after so much of experience, I am many times get confused in that. Spirituality, to me, it is everything. They are interrelated. And again, what was written by, whether it is Ved, Puran, Gita, Ramayana, Mahabharata, or say anything, आज ये ज्ञान सरोवर है, जैसा हमारी बहन जी ने बताया कि ज्ञान सरोवर में है। और फिर जो बातें सामने आई हैं, एक शिक्षा निरंतर होती है, जैसा हमारी दीदी शैल जी ने कहा कि शिक्षा तो निरंतर है। आज भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं ये बात को। अब जब ये और आगे में बढ़ा और रिसर्च में आगे आया, तो यही गॉड मेरे अलग रूप में आया। जब मैंने पहली बार समझा, कैंसर के बारे में पढ़ रहा था, तो कैंसर में व्हाट इज द कैंसर, कैंसर देयर आर टू मैकेनिज्म, वन इज प्रोलिफरेटिव, ग्रोथ होती रहती है, और दूसरी देयर इज ए डिस्ट्रक्शन, उसको एपोटोसिस बोलते हैं, जो नया टर्म यूज करने लगे थे 1890s में. दैट इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल्स फॉर द डेथ. देयर इज ए प्रोग्राम क्रिएटेड बाय द गॉड एंड दैट गॉड इज यम. वी ऑल से यम. नाउ यम, सो द साइंटिस्ट हु इन यूएसए हु डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन, ही टोल्ड इट इज ए यम जीन. And that was changed by Americans to again caspase 3 only, not yum gene. They removed this one. What I am trying to say, that education is the key. Whether it is philosophy, whether it is in the form of spirituality, whether it is gyan, vigyan, hum isi ke chakkar mein hai. Par hamara gyan, jo vishv mein tha, bharatiya, that was overruled by that vigyan we call. But vigyan is there in the gyan, there is no question about that. That's what is I am trying to understand, and I am trying to make out from this conference. NEP 2020 has come, we all have to implement. Value education is one of the key. And I think this Brahm Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya only can implement in the right way. This is what is my feeling, not to say it like a politically, but it is something which I am trying to design, that is it not possible? Whatever we have learned, like Dr. Mukesh Verma ji ne apne Ramayana ki baat shuru ki thi. Jagdish Chandra Bose, he got the Nobel Prize for understanding these plants. That plant has the sensitivity. Shui Mohika ji baat. And now, I also read Ramayana and all that at times. When Sita was lost, I mean, she was taken by Ravan. Ashram dekhi janaki hina, bhais vikal jas prakrit hindina. Lakshman samujhaye bhau bhati, puchat chale lata taru pati. हे मृग ने हे खग मृग हे मधुकर नैनी मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी. दिस व्हाट दिस चौपाई टेल्स इज दैट तुलसीदास रोट दैट द राम इज आस्किंग लता तरु और पाती बेल पत्ते और पुष्प इनसे पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा है क्या. अब एक शिक्षक या तो ऐसे समझाएगा उसको, ओ ये रामायण है, एक कहानी थी और कहानी में बस भावुक होके बोल दिया, या फिर ये समझाएगा कि देखो ये साइंस यहां पर मेंशन्ड है कि जो व्हाट जगदीश चंद्र बोस डिस्कवर्ड इज देयर इन दिस चौपाई. आई स्टिल रिमेंबर 1984 व्हेन आई वाज इन पोस्ट डॉक, आई वाज देयर इन विनिपेग इन द Vancouver, Canada. One of my colleague, postdoc, I also went for the postdoc. So, out of curiosity, he asked, that don't mind if I am asking a very silly question. In Hinduism, this rat is considered as a god. Now, what answer I should give? You know, what answer I gave was, I was a teacher, fortunately. I told, you have seen the movie Gandhi, in those days, if you remember 1984-85, that Gandhi came, Attenborough's. And he gave the concept of Ahimsa. I related that it is called like a god because we believe that Ahimsa has to be practiced. I taught that way. Oh, this is a great thing. See, how we teach them, rather than they interpret us, it is very easy to say, oh, ye to sab theek hai, ye kya hai. No, as a teacher, we have to justify this. This is what, if we can come out, something of this kind. Now, see, today is the science. In one of the convocation address I was reading of Honorable Prime Minister, he told, after COVID particularly, that this COVID has taught us, given the taste of technology, trust in technology and temperament in technology. Modi ji is telling this. We are not undermining science. We are not undermining the technology power. But at the same time, value added education. This is what is something which is, it has to be correlated. That's what I personally feel. Can we do that? See, we have to overcome certain things. What is written in these granths or our Indian knowledge system has been hardcore science. I can give several examples, but I may give one or two to just complete. In our Hindu mythology, we say, Gajananam Bhut Gradadi Sevitam Kapitto Jambu Phal Char Bhakcharam Gajananam Bhut Umasu Shog Vinashkaram Namami Vishweswar Pad Pankajam. It is a very routine. But in this, Gajananam Bhut Gradadi Sevitam Kapitto Jambu Phal Char Bhakcharam, Ganesh ji ko char jambu phal or lotus juice kyon diya, kyon iska mention hai? There is obesity. Ganesh ji means obesity, but no diabetes. And in USA it was discovered there is a protein called sertraline, and this sertraline, if it is expressed, it will produce diabetes, otherwise not. And that is being affected by this jambu phal. So in the one of the conference that scientist Dr. Mahesh Gupta, he was trying to narrate this, then I cited the whole shloka, that Ganesh. What I am saying is that everything is written in this, our grantha. That is what has to be digged out, and that will be the true sense of value added education. Same thing happened in COVID. When oxygen problem was there, Kapoor was given. Now when I started, as a scientist, started thinking, Karpoor Gaurav Karnavataram Sansar Saram Bhujgendraram Sadav Santam Hridayar Vande Bhavam Bhavani Saitam Namami. If I ask some person, he will say it is a shloka of the Shiva. Where is the name of Shiva here? Bhujgendra Haram only, that is the only word. But that Bhujgendra Haram can be interpreted that any poison can be treated by oxygen only. This is what has to be digged out. This is what is my feeling. So, there are several things like that. We have to integrate this and come out with some courses. See, value-added education, suppose if I say medical, you do this, learn this, but if it is customized with this discipline wise, I think it will have much more efficiency than what I can say. This is what is my personal feeling, and it will really come, and that is the way then we can overpower what the dream of Modi ji is, that yes, no, our India should rule rather than they rule us. Science, which is hidden in this grantha in the Indian knowledge system, has to come out and express according to that, so that we can do that. So this is what in short I want to tell, and I wish that we do it. And I will stop by just reciting one small poem. Humne doob ke dekhi hai daryon ki gehrai, dekhi hai pushpak se aakash ki unchai, aur vishal gol vasudha ki lambai. जग न जान पाया जल संपदा की गहराई, सर्वोच्च ज्ञान ज्योति जिसकी है ऊंचाई, यह है भारत की वसुदेव कुटुंबक की भावना, जिससे भारत में G20 है आई. वी टॉक ऑफ फोर रिवॉल्यूशंस इन साइंस. ब्रिटेन फ्रांस की मशीन से प्रथम औद्योगिक क्रांति आई, फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन वॉज दैट. अमेरिका जर्मन से बिजली द्वारा, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज द सेकेंड इंडस्ट्रियल. अमेरिका जर्मन से बिजली द्वारा द्वितीय औद्योगिक क्रांति आई. चीन कोरिया के में कंप्यूटर से तृतीय औद्योगिक क्रांति आई, 21वीं शताब्दी में रोबोट वाली चतुर्थ क्रांति आई, 4 रेवोल्यूशंस आर वेल नोन, बट कोरोना ने चारों क्रांतियों को बंद कर विध्वंस कर दिया। रोबोट तो क्या, हवाई जहाज तक रुक गए, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे भी बंद हो गए, चारों तरफ तमस आ गया। बट तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये है इंडिया। एंड अंधकार के बाद में आई है हीरक जयंती और अमृत काल की ज्योति। अरे अब आरंभ हुआ है भारत का काल, विश्व में पंचम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हाट वी आर टॉकिंग इज, इफ यू रियली सी, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, इट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ व्हाट रोबोट्स हैव टोल्ड और व्हाट फोर्थ हैज ब्रॉट, दैट इज व्हाट इज देयर। सो अब आरंभ हो रहा है नया काल, विश्व में पंचम औद्योगिक क्रांति काल, मशीन रोबोटिक्स का मानवीकरण। अरे विश्व देश साथियों, डूब के देखो दरियों की गहराई, ऐसी क्रांति तो भारत में सदियों पहले है आई। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच प्रोफेसर रमेश गोयल जी फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। एंड हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कैंडल लाइटिंग सेरेमनी की तरफ, दीप प्रज्वलन हम करते हुए, आत्मा का दीप तो प्रज्वलित हो ही, साथ में हम स्थूल दीपक भी जला करके आज के इस इनॉग्रल सेशन का हम आह्वान करते हैं। मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि लैम्प्स हमारे बीच में आए और हमारा सम्मानित मंच आगे बढ़कर के कैंडल लाइटिंग हम सबके सामने करें। और कैंडल लाइटिंग में और भी जो हमारे साथ आज इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं, डॉक्टर संतू मैती जी, यूनिसेफ स्टेट कंसल्टेंट। मंचासीन सभी हमारे स्पीकर्स से रिक्वेस्ट है कि आप कैंडल लाइटिंग के लिए आगे आए। और साथ साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, फॉर्मर वाइस चांसलर एडवाइजर ऑफ IIEBM मुंबई, डॉक्टर रोहित कुमार एंड देसाई, वाइस चांसलर फॉर हेमचंद्रया नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, डॉक्टर तंकेश्वर कुमार, वाइस चांसलर फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़, डॉक्टर कलागोड़ा बी गुदासी, वाइस चांसलर ऑफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़, डॉक्टर मिलिंद पांडे, प्रो वाइस चांसलर ऑफ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, नगलपल्ली नगराजू, वाइस चांसलर गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर, डॉक्टर अजय कुमार बहेरा, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, पूनम शेखावत, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ वेदांता स्कूल इंदौर, हरीश शेट्टी जी फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन आगरा यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मुकेश भाई फ्रॉम जयपुर, जयदेवा साहू, डॉक्टर अदिति सिंगल फ्रॉम दिल्ली, ममता बहन फ्रॉम अहमदाबाद एंड सुदेश बहन फ्रॉम दिल्ली।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही।
साथ साथ आप सभी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेंगे, आप भी हमारे बीच सम्मिलित हैं। भले मंच पर कुछ ही लोग दीप ज्वलन कर रहे हैं, साथ साथ सभा में आप सभी भी अपने आत्मदीपक जगाते हुए इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं।
राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर दीदी निर्मला जी है द जॉइंट चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द ज्ञान सरोवर कैंपस अकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड शी इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द योगा मेडिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया New Zealand and Asia Pacific region. She is a medical practitioner with the mystical understanding of meditation. Didi Dr. Nirmala included in the treatment of her patients, self-transformation, personal development and enhancing their mental process. Didi Nirmala has given classes on Raj Yoga in more than 60 countries in all the continents. In Asia Pacific, her role covers more than 50 countries. She suggests that about 90% of the diseases of the world have psychosomatic causes. And her writings and lectures on mind, your health and doctors for tomorrow are eye-openers. I invite Didi Dr. Nirmala, who has been an inspiration for all of us, and the senior most Didi now of the organizations and equivalent to our Dadi, I invite Didi ji to give her blessings for today's conference.
Om Shanti. Aap sabhi ka phir se Gyan Sarovar ke angan mein swagat hai, swagat hai, swagat hai. Educationist. हमारे भविष्य के आर्किटेक्ट जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक टीचर कई स्टूडेंटों का भविष्य बनाने में मददगार है वैसे भी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ दान है विद्यादान उस विद्यादान में भी श्रेष्ठ मैं कहूंगी ये ईश्वरीय विद्या या रूहानी ज्ञान है शास्त्र तो हम पढ़ते आए सुनते आए भारत की दिन प्रतिदिन मॉरली डिक्लाइन होता गया है अब भारत को फिर से मॉरली अपलिफ्ट करने का ये रूहानी ज्ञान है आज हम देख रहे हैं भारत की दिन प्रतिदिन क्या हालत होती जाती है क्राइम्स बढ़ते जाते हैं और वायलेंस बढ़ती जाती है बच्चे भी माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं वृद्ध माँ बाप को ओल्ड होम में भेज देते हैं तो जो भारत एक समय स्वर्ग था लक्ष्मी नारायण का राज्य था वो भारत आज बिल्कुल गिरावट में पहुंच गया। कलयुग है, तमो प्रधान दुनिया है, तो हम समझ सकते हैं गिरावट होती है, परंतु रात के बाद दिन आता है। तो अभी कलयुग पूरा हो, फिर सतयुग आना है। ये संसार में ये चक्कर चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो आज हम संगम पर है, कलयुग पूरा हो रहा है, सतयुग की फाउंडेशन लग गया है। ये ईश्वरीय विद्या और योग के द्वारा हम फिर से नर से नारायण बनेंगे। तो जहाँ ईश्वर हमारा टीचर और गुरु है, बाप तो मानते ही आए हैं ईश्वर को, टीचर और गुरु भी है, तो वो हमको शिक्षा दे के आप समान देवी देवता बनाते हैं। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ पधारे हो, 3-4 दिन ईश्वरीय ज्ञान का आपको परिचय मिल रहा है। उम्मीद है कि आप अपने शहरों में भी जाकर इस बात को ज़्यादा समझेंगे और अपने में मॉरल उत्थान जरूर करेंगे। तो इसी उम्मीदों के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।
थैंक यू दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, जिससे हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे बीच में माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म एविएशन एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको बहुत समय से हम यहाँ बुला रहे थे और बहुत इच्छा रखते थे कि आप हमारे स्थान को एक बार विजिट करें, और आज वो दिन आया है। मैं निवेदन करती हूँ भ्राता जी से कि कुछ शब्द अपने अनुभव के और हम सबको गाइडेंस भी थे आज के हमारे इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर महेश शर्मा जी।
ओम शांति। इट्स माय प्रिविलेज टू बी हियर टुडे। After a long wait, when I was planning to visit this holy place, and when we say that when Shiv Baba called and somebody became instrumental in bringing me here, she is sitting in this auditorium, none but Renu Didi. Pranam to all sitting across the dais, and on the dais, Nirmala Didi, Mrityunjay ji and other dignitaries on the dais. I have been associated with this movement of Brahma Kumaris for a long, and it has changed my life. I am 64 years now. My wife, Dr. Uma, is here. When I learnt about the human life, the spirituality, the divinity, I am not a speaker, an expert on this subject, but I am a teacher's son. And when I came to know about this, this conference is that educators being the future generation's masters. When God created human being, He created the best of it. जब भगवान ने इंसान को बनाया तो ये सोचकर कि ये मेरी सबसे सुंदर कृति है, उसने सांप भी बनाए, शेर भी बनाए, जल थल चर बनाए, पेड़ पक्षी पशु सब बनाए, और ये सोचकर कि मेरी सबसे सुंदर कृति इंसान, तो बिल्कुल वैसे चलेगा, वैसा करेगा जैसा मैंने डिस्टाइन किया है। और उसने इस मानव को जब जमीन पर भेजा तो ये मानव सबसे सेल्फिश कृतित्व निकला। सबके लिए डिसाइडेड था कि अगर 6 इंच की घास होगी तो खरगोश खाएगा, 2 फुट की घास होगी तो भेड़ बकरी खाएगी, उससे ऊपर की घास होगी तो भैंस खाएगी, और लंबा पेड़ होगा तो जिराफ और ऊंट खाएगा। शेर को सबसे ज्यादा ताकत दे दी लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। इस मनुष्य को ताकत दे दी कि ये उस पेड़ को भी काट सकता है, उस शेर को भी मार सकता है, उस घास को भी बर्बाद कर सकता है। अकूत ताकत उस भगवान ने इस मनुष्य को दे दी। अब जब ये मानव अपने रास्ते से भटकने लगा, उसने बहुत सारे अपने प्रतिनिधि भेजे। निर्मला दादी, मुझे अभी ज्ञात, वैसे पहले से भी मैं जानता हूं कि चिकित्सा के माध्यम से मुस्कुराहट लाती हैं, दूसरों का दर्द दूर करती हैं, और ये जानते हुए कि ये मनुष्य सबसे स्वार्थी है, हम इस हॉल से बाहर जाएं और किसी को 500 रुपए दे दें बैगर को, तो हम उसको प्रणाम नहीं करते, उसके पांव नहीं छूते, हम पांव छूते हैं उसके ही जो गिवर है। एंड कालचक्र पुस्तक सेज दैट 80-85% ऑफ टाइम हम लोग मांगते ही रहते हैं, बेटा दे दे, बेटी दे दे, डॉक्टर बना दे, मंत्री बना दे, मिनिस्टर बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे, कुछ बना दे, प्रोफेसर बना दे, वाइस चांसलर बना दे, कुछ मांगते रहते हैं। जो जीवन का 20% समय आता है जिसमें हम देने के उसमें आते हैं, और अगर वह भी नाकारा हो जाए तो जीवन नाकारा ही है। उस भिखारी को जिसको हम 500 रुपए देते हैं, उसके पांव नहीं छूते, सम्मान नहीं करते, उसके सिंपथाइज करते हैं, उसके साथ सांत्वना देते हैं कि इस गरीब को मैंने 500 रुपए दिए, उससे वो रोटी खाएगा, और फिर भी मेरा स्वार्थ है, वो मुझे आशीर्वाद देगा और उसको देकर मुझे खुशी मिली है, उसको 500 रुपए देकर मुझे खुशी मिली है। तो अल्टीमेट एम ऑफ वी सैल्यूट गिवर्स नॉट द बैगर्स, एंड वी आर आरसेल्फ द बैगर्स, सो वी सैल्यूट द गिवर्स, दैट अल्टीमेट गिवर इज शिव बाबा। द नेक्स्ट गिवर कम्स टू द कैटेगरी ऑफ आर पेरेंट्स, हमारे मां बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया। और तीसरी कैटेगरी में अगर कोई गिवर है जिसके हम पांव छूते हैं, कहीं भी मिल जाए, कोई देश का प्रधानमंत्री मंत्री भी होगा तो किसी के पांव नहीं छुएगा, लेकिन अगर उसका टीचर जिसने उसे 5वीं क्लास में पढ़ाया होगा तो उसके पांव जरूर छू लेगा। तो यानी सब कुछ गुरु शिव बाबा है, मां से बड़ा गुरु कहीं डिफाइंड ही नहीं है। सबसे बड़ी गुरु अगर जन्म से है तो मां है, और उसके बाद टीचर है ही। तो हमारी सारी दुनिया अगर किसी के हाथ में है तो एजुकेटर के हाथ में है, और अगर एजुकेटर ने अपना पूरा काम सही ढंग से कर दिया तो समझिए कि ये जो भटका हुआ मानव है, जो रास्ते से भटक गया है, अपने विषयों से भटक गया है, उसे कौन सही करेगा? ये एजुकेटर। और इसी एजुकेटर के रास्ते से जब ये एजुकेटर ने कहा कि गेहूं की फसल और नस्ल बढ़ानी है, इंप्रूवमेंट करना है, गाय की और कैमल की फसल भी बढ़ानी है, क्रॉस ब्रीड कराना है और उसकी नस्ल भी बढ़ानी है, इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन इस भटकते हुए मानव की नस्ल को कौन बढ़ाएगा, इसको सदमार्ग पर चलने का मार्ग कौन दिखाएगा, ये तो एजुकेटर का ही काम है, बशर्त कि वो एजुकेटर खुद भी कॉम्पिटेंट हो। और एजुकेटर टीचर ही एक ऐसी एंटिटी है दुनिया में, मां बाप के बाद और गॉड के बाद, जो अपने से बेहतर, अपने से सुंदर अपने शिष्य को देखना चाहता है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता, दोस्त नहीं देखना चाहता, एजुकेटर जरूर देखना चाहता है कि मेरा स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, ये एजुकेटर की कैपेसिटी है और एजुकेटर की सोच है कि वो एजुकेटर ये करे, और एजुकेटर ही इस मानव के नस्ल को सुधारने का काम, जो काम शिव बाबा ने इस संस्थान की स्थापना के साथ किया कि इस भटकते हुए मानव की नस्ल को कौन सुधारेगा, और ये जो यहां से बनकर जाएंगे ये फिर उस गॉड के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे और इस काम को वर्ल्ड वाइड धर्म जाति बिरादरी से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के लिए करेगा, ये उस एजुकेटर का रोल होगा। और तभी हम इस एजुकेटर को प्रणाम करते रहेंगे बिकॉज ये गिवर है। हम यहां भी आए हैं, हम में से बहुत से लोग जिन्होंने यहां अपना जीवन, अभी मैं जमुना प्रसाद जी से मिला, जीवन के 60 साल जिन्होंने यहां गुजार दिए और अपने परिवार को भी ले आए। क्या लेने आए थे यहां और हम क्या लेने आए हैं? एक अल्टीमेट वर्ड है, हैप्पीनेस। हम खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इवन नशा करते हैं, कुछ और भी करते हैं, अल्टीमेट एम ऑफ दैट इज प्लेजर हियर, दैट इज खुशी। द होल वर्ल्ड इज इन द सर्च ऑफ दैट हैप्पीनेस। हो सकता हम खुश हों, हो सकता हम सफल भी हों। सफलता का मतलब कोई $1 trillion, $1 million का इंजीनियर बन गया, करोड़पति बन गया, लेकिन सफलता और खुशी ये जीवन के दो पहलू हैं। नदी के दो किनारे हैं, एक सिक्के की दो साइड्स हैं। हो सकता है हम सफल हों, खुश ना हो। सफलता होना खुशी का इंडिकेटर नहीं है, और खुशी लेने के लिए दैट अल्टीमेट पीस ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम इनर सेल्फ व्हेन वी रियलाइज। आई वाज रीडिंग जस्ट अभी, मुझे जो डायरी दी गई उसकी पहला पेज मैंने खोला, लाइन में था कि हम अपनी इच्छाएं खत्म कर दें तो खुशी खुशी है, अगर अपेक्षाएं और इच्छाओं को खत्म कर दें तो खुशी खुशी है। यही तो ब्रह्म कुमारी के इस आश्रम में और पूरे देश नहीं विश्वभर में फैले केंद्रों के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि जब तक ये मानव खुश नहीं रहेगा, सफल हो सकता है, सफल ये प्रधानमंत्री बनकर हो सकता है, सफल ये अरबपति बनकर हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये खुश ना हो, और अगर ये खुश नहीं है तो दूसरों को खुश नहीं बांट सकता। एक दुखी व्यक्ति दूसरे को खुशी नहीं बांट सकता जी, वो उससे ईर्ष्या करेगा, मैं दुखी हूं इनको खुशी देखकर मैं इनसे ईर्ष्या करूंगा, और खुशी बांटने के लिए मेरा खुश होना पहले जरूरी है कि मैं पहले संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। एंड खुशी भी सब्जेक्टिव है, हो सकता है मेरी खुशी इनके लिए दुख का कारण बन जाए कि मैं मिनिस्टर क्यों बन गया, ये क्यों नहीं बन पाए, हो सकता है मेरा दुख इनके लिए खुशी का कारण बन जाए, मेरा घर में कोई हादसा हो जाए, मेरा 20 साल के बेटे को कुछ हो जाए, इनको खुशी मिल सकती, हो सकता उससे। तो खुशी और इसका अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ गोज कि हम इस मेंटल पीस की सर्च में और एजुकेटर बनकर, टीचर बनकर, गुरु बनकर इस सोसाइटी को, इस ह्यूमैनिटी को, इस वर्ल्ड को क्या वापस कर सकते हैं। ये दुनिया हमें मान देती है, सम्मान देती है, पहचान देती है, वाइस चांसलर्स बैठे हैं यहां, टीचरों का अल्टीमेट होता है एक वाइस चांसलर बनना, लाखों स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। आज अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज कि व्हाट वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी, टू द पीपल ऑफ दिस नेशन एंड ऑफकोर्स द वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इज आर एम ऑफ लाइफ। एंड आई एम श्योर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, we cannot be the biological parents of anybody, किसी के माँ बाप हम नहीं बन सकते जी, लेकिन हाँ उसके टीचर हम जरूर बन सकते हैं, चाहे उसे जिंदगी में एक ही लाइन की बात अगर हम आज ये सिखा दें जो मुझे उस डायरी में सीखने को मिली कि अपनी इच्छाएं त्याग दो तो खुशी अपने आप ही आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो वाइस चांसलर्स यहां बैठे हुए हैं, डायस पर बैठे हुए हैं, अपने इस थीम को लेकर कि मुझे उन बच्चों को डिग्री सर्टिफिकेट्स ना बांटकर अंदर की खुशी, इंटरनल ब्लिस एंड इटर्नल हैप्पीनेस। मैं दीदी के साथ 5 मिनट सवेरे वीडियो पे रेनू दीदी के साथ मेडिटेट करता हूं और आप समझिए वो 3 मिनट मेरे दिन के लिए मेरी बैटरी को चार्ज कर देते हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद मृत्युंजय भाई साहब, आपने मुझे अवसर दिया इन महान हस्तियों के साथ बैठने का, पूज्य निर्मला दीदी के साथ बैठने का, ये मेरा सौभाग्य है जीवन का। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। अभी मैं निमंत्रण देना चाहती हूँ राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार मृत्युंजय भाई जी। आप चेयरपर्सन हैं एजुकेशन विंग के, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ब्रह्म कुमारीज के, और आप गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द ब्रह्म कुमारीज एंड राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। आपके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रम जैसे क्लीन द माइंड, ग्रीन द अर्थ, आप डायरेक्टर हैं उनके, और लिविंग वैल्यूज एंड एजुकेशन प्रोग्राम, उसके भी आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे फेसेस हैं आपकी पर्सनालिटी के, कैसे डिस्क्राइब करें, लेकिन बहुत डायनेमिक हैं, हमेशा एक पैर इधर दूसरा पैर कहीं, तो सब जगह ट्रैवल करके बहुत सारी आत्माओं को आप लाभान्वित करते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आज का चेयरपर्सन स्पीच आप हमारे समक्ष रखें।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम परमपिता श्री बाबा, फरिश्ता स्वरूप में उपस्थित रहने वाले पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और हमारा सभी पूर्व दादियों को याद करते हुए इस समय में इस सम्मेलन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर ब्लेसिंग दिया हमारे दादी डॉक्टर निर्मला जी, उसकी आयु कितना है बताएं? 90 ईयर्स, छोटा है। आपने देखा, वो मैंने कहा दीदी आप इधर ही बैठ करके बोलो, नहीं मैं उधर जाएंगे। दूसरी जो बात मैं बताना चाहता हूं, इस समय में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासक दादी रत्न मोहिनी जी है, उसका आयु कितना बताएं? 99 ईयर्स, नेक्स्ट ईयर सेंचुरी हो जाएगा। इससे पूर्व में हमारा दादी थी जानकी दादी, उसका सेंटेनरी सेलिब्रेशन किया, उस समय हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जी ग्रीट भी किया, मीट भी किया, इंस्पायर भी किया। मैं ये बात इसके लिए कहता हूं, हमारा सम्मुख में सभी वाइस चांसलर्स इधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, ऑडियंस में भी बैठे हैं, मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि हमारा संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, इनको आचार्य को गुरु समान, देव समान, देवताओं के समान हम देखते हैं। क्यों? मंत्री देवो भव नहीं कहते, उसको ऑनरेबल मंत्री जी कहते हैं, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कहते हैं, उसको देवो भव नहीं कहते। सारी सर हमें नॉट क्यों ऑनरेबल कहते हैं। हमारा देश का पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर राधाकृष्णन एक बात कहते हैं, नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम। देश का निर्माण, मानव के जीवन का निर्माण और इतिहास बन जाता है, और इसका कार्य कहां चलता है? स्कूल में, टीचर से, जैसे प्रताप जी ने अभी भी कहा। हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय का सिद्धांत भी यही है। हमारा सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े किताब पढ़ाने के लिए नहीं है, केवल 4 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नंबर 1 ज्ञान, बिकॉज वी बिलीव इन द नॉलेज। सिर्फ इंग्लिश शब्द को नॉलेज कहते हैं, परंतु ज्ञान एक बहुत बड़े मीनिंग है उसमें, बड़े फिलॉसफी है, बड़े कर्तव्य है, सूचक है। दूसरा जो है योग, योगी बनो, ज्ञानी बनो, महान बनो। योग जो है मनुष्य के अनेक मानसिक विकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को, पाप संकल्पों को, दुष्ट संकल्पों को, अनेक नेगेटिविटी को दूर करता है योग। तीसरा जो है धारणा. हम वैल्यूज के बारे में बहुत बात करते, किताब लिखकर बहुत बहुत कुछ किया, परंतु फिर भी आज की दुनिया को देखने से क्या दिखाई देता है आप सबको मालूम है. चौथी सब्जेक्ट है सेवा भाव. मैं इसके एग्जाम्पल देना हो तो वर्तमान समय में ईश्वरी विश्वविद्यालय में डेडिकेट होकर के ईश्वरी शिक्षा देने वाले हमारा बहने, जैसे हमारा शिविका बहन है, सुमन बहन है, अन्य बहन है, ऐसा लगभग 30,000 बहने डेडिकेट, वो कोई भी सैलरी नहीं देते. हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्कूल नहीं है जहां सैलरी के बिना टीचर हो. शिक्षा को बेचने वाला नहीं, शिक्षा दे करके लेने वाला नहीं बनना, देने वाला बनना. इसके लिए इस बाबा ने कहा ये शिक्षा के लिए फीस नहीं देंगे, इस फीस शिक्षा के लिए हम अन्य माध्यम नहीं ढूंढेंगे, इसका मनी मेकिंग मशीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेवा भाव है. जब तक ये सेवा भाव है, ज्ञान भाव है, योग भाव है, धारणा हम चेक करते हैं. हमारे दादी जी ने एक बार भी हमारे बहन ने सुनाया, एक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस था, दादी ने उन सबसे पूछा, सभी लॉयर्स थे, दूसरे लोग इधर कौन झूठ नहीं बोला जीवन में हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं किया दादी ने अपना हाथ उठाया. मैं इस बात इसके लिए कहता हूं, व्हेन आई लुक एट द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, प्रेजेंट डे सोसाइटी, प्रेजेंट डे सिस्टम, एवरीथिंग, व्हाट आई फील, व्हाट आई नोटिस, व्हाट आई रीड एंड व्हाट आई ऑब्जर्व, वन इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस. मनुष्य का मस्तिष्क को एक क्राइम का मशीन बना दिया, अर्थात दुख देना, दुख लेना, भाई क्रिएट करना, भाई को अपने जीवन में अनुभव करना, दूसरों को निंदा करना, खुद निंदा स्तुति के समान नहीं बन सकता है उस समय, इसके लिए प्रोसेस हो रहे. दूसरा जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द रिलेशन, एजुकेशन, व्हाटएवर यू टेक इट, इसके लिए व्यापारीकरण, दिव्यीकरण नहीं है, ह्यूमनाइजेशन नहीं है, स्पिरिचुअलाइजेशन नहीं है और डिविनाइजेशन नहीं है. व्यापारीकरण बढ़ते 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 जा रहे, जहां व्यापार है वहां लाभ की सोच है, जहां व्यापार है स्वयं के बारे में सोचते हैं, जहां व्यापार है वहां ना कहीं झूठ मिक्स हो जाए. परंतु बाबा ने इससे हट करके हम लोगों को डिविनाइजेशन का प्रोसेस बनाया. हमारा दादी जी सदा ये कहते आपने आज क्या सेवा किया. इसके लिए बाबा ने एक बहुत बड़ी बात, किसी को दुख देना भी नहीं, दुख लेना भी नहीं. क्यों? एजुकेटेड देन भी नहीं देगा, ले भी नहीं लेगा, पर तो सुधारने का काम करेगा. इसके लिए बाबा ने ये बात बहुत बड़े दिन पहले ही बोला था. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा टीचर्स कॉन्फ्रेंस कहो, एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस तो इधर हुआ था. वो दी देन हरि डॉक्टर हरि गौतम वे चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थे, वो भी थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी भी थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, परहैप्स यू ऑल नो. उन्होंने एक बात कहा, वी हैव ए नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है और दूसरा भी है, बहुत है, म्यूजिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट देर इज नो वन सिंगल यूनिवर्सिटी. But this university was not established by the act of parliament or a state legislation, but is an act of divine. And this is the only spiritual university existing in the world. Spiritual university अर्थात अपना spirit के बारे में, अपना आदि मध्य अंत के बारे में, हमारा कर्म के बारे में, हमारा भविष्य के बारे में, विश्व के भविष्य के बारे में सही ज्ञान देने वाला यदि university है तो शिक्षा देने वाला है तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय. उसी दिन इन्होंने घोषित किया, हमने देखा नहीं था, बहुत बहने आते थे, राखी कार्ड बांधते थे, किताब देते थे, हम किताब रख देते थे, परंतु आई फील वंडर. ये बात इसके लिए कहता हूं, टीचर्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द नॉट ओनली द फ्यूचर जनरेशन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड द फैमिली फर्स्ट. मैं इस बात इसके लिए, दूसरी एक ओकेशन था हमारा दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, क्या हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय डायमंड जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था. उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एंड प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा सभी थे, उसकी सेशन के बाद में वी एन नारायण एक हिंदुस्तान का एडिटर था, वो भी ईश्वरी विश्वविद्यालय का संपर्क में संबंध में बहुत समय से थे। पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में था, बाद में अलग अलग। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताया, उसने ये कहा, मैं डेली एडिटोरियल लिखता हूं, डेली आर्टिकल लिखता हूं, हम कभी कभी अकेशन होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से दूसरे दूसरे देशों में यात्रा भी करता हूं, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को करीब 25 साल से मैं देता हूं नजदीक, मंत वो भी आया है। परंतु मेरा इतना बड़ा पेपर पढ़ने के बाद में कोई नहीं आकर के शांति मिली, खुशी मिली, हेल्थ मिली, कोई नहीं कहा। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक मुरली होता है जिसको हम के ज्ञान कहते हैं, परमात्मा ने उच्चारा हुआ महावाक्य कहते हैं, वो मुरली 3 पेज का, इतना बड़ा भी नहीं होता, उससे छोटा है, 3 पेज का मुरली पढ़ करके सदा हंसते रहते हैं, खुशी रहते हैं, और उनका जीवन में शांति रहते हैं। मैंने ये देखा, मानो व्हाट एक न्यूज़पेपर का एडिटर इस बात को एक्नॉलेज करता है, और इससे बहुत लोग हैं। मैं अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं सभी वाइस चांसलर्स को इधर उपस्थित है उन सबको नमन करता हूं। आप सभी वाइस चांसलर एक शिक्षा दुनिया के लिए दे दे, मनुष्य को वॉइस लेस को कम कर देना, अपने जीवन कभी दूसरों के जीवन में आने वाले वॉइसेस है। मैं इधर एक प्रश्न पूछना था, किस किस को क्रोध नहीं आते, हाथ खड़ा करें, और डॉक्टर निर्मला बेन जी से कुछ अवार्ड दिला दें आपको, हाथ कोई भी नहीं उठा रहे। क्रोध आता है तो किसका चेहरा खराब होता है, किसका करा, सामने वालों का होता भी है, परंतु खुद अपने चेहरा खराब होता है, अपनी आंख खराब हो जाते हैं, अपना हार्ट खराब हो जाता है, अपना नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। हम सभी एनलाइटेड पीपल है, पढ़े लिखे लोग है, डॉक्टरेट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, करीब 25 साल सारे जिंदगी में टाइम स्पेंड करते हैं डिग्री लेने के लिए। अपना क्रोध अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। एट द प्लेजर एंड ऑनर ऑफ मीटिंग अवर दादीज, उसमें भी अमंग देम दादी प्रकाशमणि दादी, फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, मैंने उनके जीवन काल में करीब 45 ईयर्स उसके साथ जीना और इसके साथ ट्रैवल करना, इनकी जो आदेश से काम करना था। परंतु इस इंस्टीट्यूशन को एक 1 मैन से 1 मिलियन सोल्स तक ले आने के टाइम में एक दिन भी उसको गुस्सा नहीं देता मैं, एक दिन भी दूसरों का कंप्लेंट सुनते तो उसका चेहरा में कोई ना कोई चिंता नहीं होती थी, उसको मुस्कुराते हुए, उसको दृष्टि देते हुए, उनकी ब्लेसिंग देते हुए उनके जीवन को भी शेयर करती थी, इंस्पायर करती थी, एनलाइट करती थी, एम्पावर करती थी। इसके लिए उन्होंने 4 शब्द, शेयर, केयर, इंस्पायर एंड एनलाइट, हमारा जीवन में ये एक रूप हो जाए, ये सिद्धांत हो जाए, ये सोच हो जाए, ये योग हो जाए, ऑटोमेटिकली हम सारे संसार को बेहतर बना सकते हैं। इस साल हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव, भारत सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किया, हम लोगों ने भी उसको जोड़ करके एक एक आइडिया दिया, आजादी से अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत, भारत को स्वर्णिम बनाना है ना, गोल्डन भारत की बात नहीं, एक एक भारत की एक देव मानव बन जाए, एक एक भारत की प्रजा संतुष्ट बन जाए, एक एक भारत का वासी विश्व गुरु बन जाए, तो विश्व अपने आप अपने पास आएगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस लक्ष्य को लेकर के भारत को एक देव भूमि बनाने का, क्योंकि भारत ने कृष्ण दिया, राम दिया, शंकराचार्य दिया, मध्वाचार्य दिया, बहुत आचार्यों को भी दिया, देवतों को भी दिया, विज्ञान को भी दिया, परंतु मानव को मानव बनाए, मानव को देव मानव बनाए, इसका विधि, इसका शिक्षा, इसका योग ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाया जाता है। रिसेंटली और ऑनरेबल होम मिनिस्टर एक बात को मीडिया के माध्यम द्वारा पार्लियामेंट ने एक्नॉलेज किया, कौन सा, शराब मुक्त जीवन जीने के लिए ब्रह्म कुमारी की कॉन्ट्रीब्यूशन अद्भुत है। इसके लिए आगे चलकर के भी इस दुनिया का उसका गलती बहुत है, मैंने इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल स्वार्थ के लिए नहीं, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत का अर्थात एक दीवार नहीं, एक पहाड़ नहीं, एक नदी नहीं, इतना नहीं, एक एक व्यक्ति देवता बने, देने वाला बने, हाथ ऐसा रखने वाले। क्यों? हमारा देश में सरस्वती बने, हमारा देश में लक्ष्मी बने, हमारा देश में दुर्गा बने, हमारा देश में, इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसका सीक्रेट क्या? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य बहने होना चाहिए। इसके लिए आज के दिन में भी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेड जो 199 है, सी द नंबर वन, सी द चीफ ब्रह्म कुमारी कहते हैं। हमारा पहले भी मैंने कहा मातेश्वरी जी के बारे में, दादी जानकी के बारे में, दादी प्रकाशमणि जी के बारे में, मैं इसके लिए कहता हूँ नारी को नारी से नहीं देखो, उनको शक्ति देखो, उनका शिक्षा देखो, इनका सेवा देखो। आज कोई मातृ का सब्स्टिट्यूट है क्या? माँ का सब्स्टिट्यूट दुनिया में, माँ का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। इसके लिए बाबा ने कहा था इत्र नार्यम पूज्यते। बाबा ने उनको पहचाना और उनको उत्थान करने की विधि बताया, और उनके जितना फेथ है एक दो के प्रति, स्नेह भाव है, सहयोग का भाव है, और मातृवात्सल्य के भाव है, वो कहां से मिलेगा? किताब में नहीं मिलेगा, म्यूजियम में नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, वो जीवन जीते हैं उनके जीवन। उसके लिए उनको आगे बढ़ाओ, उनको सहयोग दो, उनका शक्ति दो, उनको रिकग्नाइज करो, उनको मोटिवेट करो, और अपने आप को मोटिवेट हो जाएगा, उससे भारत विश्व गुरु बनेगा। वी बिलीव इन वन इम्पोर्टेंट थिंग, एक वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वसुधैव कुटुंबम केवल वो शब्द रह गया, परंतु अभी प्रैक्टिकल में देखना हो तो यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ए गॉडली यूनिवर्सिटी, ए डिवाइन यूनिवर्सिटी कैन मेक इट टू हैपन। सो इस कार्य में जो भी सहयोग देते हैं, नहीं करते हैं, और आप समझ में आता है उनको, और सदा सहयोगी बन सकते हैं, वो एक दिन योगी भी बन जाएगा। इसके लिए मैं ही कहेंगे, उपस्थित सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और निमंत्रण देता हूँ बार बार आते रहे, और रोज एक बार मुरली पढ़े। और जैसे भाई साहब ने कहा 3 मिनट मेडिटेशन में भी कम से कम 100 घंटे का एनर्जी हमारा बढ़ सकता है, तो आप बताओ आत्मा को कितनी शक्ति मिल सकता है। इसके लिए यही कहेंगे, बी होली बी योगी, बी सिंपल बी पावरफुल, बी पीसफुल बी ब्लिसफुल, बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू भाई साहब। एक काम तो हम सभी कर सकते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो डायरी लिखते हैं रोज रात को? ओके, बहुत कम है। अच्छा, कितने लोग हैं जो डायरी लिख सकते हैं रात को सोने से पहले? ओके, तो आज से शुरू करेंगे। शुरू करें, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, तो एक कॉलम उसमें ऐड करिए सभी, एक कॉलम। बाकी चीजें तो लिखते हैं हम, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज मैंने ये लेक्चर दिया, वो तो ठीक है, वो तो आप सभी जानते हैं, वो तो आप रोज करते हैं, लेकिन एक कॉलम उसमें ऐड कीजिए कि आज मैंने क्या सेवा की, सेवा भाव से मैंने कौन सा कर्म किया। तो वो एक छोटा सा कॉलम जरूर लिखिए, चाहे उसमें आप एक लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। क्योंकि जब तक जीवन में सेवा भाव नहीं है, हमारे कर्म में सेवा भाव नहीं है, वो खुशी, वो शांति, वो आनंद, वो हमें मिल ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में सेवा का क्या काम किया, वो जरूर एक एडिशन करके यहां से हम लेकर के जाएंगे। ओके, हमारे आज के इस सेशन का लगभग अब अंत आ ही चुका है। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो कर दूं कि अभी 3:30 बजे भोजन के बाद सभी थोड़ा रेस्ट करके 3:30 PM आप सभी फिर से यहां पहुंचेंगे, तो आपका होलिस्टिक वेलबींग ऑफ एजुकेटर्स वाला सेशन शुरू होगा, और 6:00 आपका इम्पैक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इन लाइफ सेशन है, जिनके स्पीकर डॉक्टर अदिति सिंगल हैं। और अभी मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि हमारे मंचा सीन जो भी स्पीकर्स हैं उनका फेलिसिटेशन करें, सम्मान करें गोल्डन शॉल के द्वारा और ईश्वरीय सौगात देकर के आदरणीय हमारी दीदी डॉक्टर निर्मला और मृत्युंजय भाई जी सभी स्पीकर्स का सम्मान करेंगे। Godly gift is a token of love and remembrance. Dr. Mahesh Sharma ji ke wife hamare beech mein hain, unka bhi samman ho raha hai. Aur iske saath मान के बाद इस सेशन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर बीके आरपी गुप्ता जी द हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ब्रह्मा कुमारीज टू थैंक एवरीवन।
ओम शांति। मंचासीन सभी महानुभाव एवं इंडिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमात्मा का जिनकी प्रेरणा से आज का यह सेशन निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी का जो ज्वाइंट चीफ ब्रह्मा कुमारी जो डायरेक्टर ज्ञान सरोवर हैं। राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई जी आप चेयर पर्सन हैं एजुकेशन विंग के, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारीज के, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। राजयोगिनी बीके सीलू दीदी जी, आप वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के और सीनियर राजयोगा टीचर हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो प्रोफेसर रमेश के गोयल, प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास, प्रोफेसर मुकेश कुमार वर्मा और प्रोफेसर बीजे राव, आप डिफरेंट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे हैं और मानव सेवा के लिए और बहुत काम कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद। डॉक्टर बीके पांडेमणि डायरेक्टर वैली एजुकेशन और बीके सुमन बहन जी नेशनल कोऑर्डिनेटर एजुकेशन विंग, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीके शिविका बहन जो हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर एजुकेशन विंग है, आज का सेशन बहुत ही सुंदर तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। हमारी दो नन्ही बेटियां और बच्चियां आकांक्षा और काम्या, कितना सुंदर डांस आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरवाणी ग्रुप, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। मधुर शब्दों में आपने बहुत अच्छा गीत गाया, और इसके साथ साथ और बहुत सारे भाई बहने जो प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से इस सेवा से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सब से बढ़कर आप सभी भाई बहनों का जो समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप यहाँ से लेकर जाएंगे। एक बात दो दादी जानकी जी कहा करती थी कि कुछ भी चला जाए आपके मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, तो ये मुस्कुराहट यहाँ से लेकर जाएंगे। जिस भी भाई बहनों को आप देखेंगे यहाँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, वो चीज उनसे लेकर जाएंगे। इन चार शब्दों के साथ मैं चार लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि फूल बनकर मुस्कराना, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स भाई सर। सेशन का एंड हम 2 मिनट परमात्मा की याद से करेंगे।